पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय एक से तीन पद। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वही बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जी सिन टीवी दर्शकों, आज बहुत सारे लोग अपना जीवन अनिश्चित भविष्य के चलते असुरक्षित महसूस करते हुए और डर के साथ जीते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वे नहीं जानते कि किस प्रकार के अनहोनी यहां तक कि कल भी उनके साथ हो सकती हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इस संसार के अंत के बारे में सोचकर चिंता और डर के साथ अपना जीवन जीते हैं। वे चिंता करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि कब और कैसे इस धरती का नाश हो जाएगा, या तो किसी प्राकृतिक आपदा या किसी विपत्ति के कारण। जैसे जैसे संसार का अंत नजदीक आता है वे उतना ही अधिक अपना जीवन कष्ट और दुख के साथ जीते हैं। और हाँ, हालांकि ऐसे लोग हैं जो मनुष्य जाति के भविष्य के लिए आशावादी होते हैं, मगर जिस प्रकार की वास्तविकता का सामना इस वक्त मनुष्य कर रहे हैं, ऐसे में किसी भी आशावादी सोच के लिए जगह ही नहीं रह जाती है। असामान्य मौसम, औद्योगिक विकास के चलते पर्यावरण का विनाश हो जाना, प्राकृतिक आपदाएं, असाध्य बीमारियों की संख्या, अंधकारी बीमारियों की संख्या, नई नई बीमारियों की संख्या का बढ़ना, नैतिकता खत्म हो रही है और अपराध अधिक से अधिक अमानवीय और भयंकर होते जा रहे हैं। जातियों में, धर्मों में और देशों में अंतर्राष्ट्रीय टकराव हो रहे हैं। ये सारे की सारी बातें, इन सभी बातों की वजह से लोगों का जीवन हर दिन असुरक्षा और डर से भर गया है। इसलिए लोग हमेशा भविष्य को जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं और वे भविष्य के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं जो पहले बता सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। चाहे लोग भविष्य के लिए कितनी ही अच्छी तैयारियां क्यों ना करें, तो भी कोई भी योजनाएं सिद्ध नहीं हो सकती। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन, मृत्यु, भाग्य और अभाग्य को चलाता है। यदि परमेश्वर किसी का जीवन ले लें, तो उस व्यक्ति ने जो कुछ भी शारीरिक रूप से इस संसार में तैयार किया है वो सब का सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर जब संसार का अंत का समय नजदीक आएगा तब क्या होगा और हमें उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है? इसका उत्तर प्रकाशित वाक्य की किताब में मिल सकता है, जिसके ऊपर मैं आज से आपको उपदेश देने जा रहा हूँ। आप ये स्क्रीन देखिए, ये हमारे चर्च का क्रूस है और वहाँ पर बहुत साफ गोलाकार वर्षा धनुष है। और किसी ने मुझसे कहा कि उसके ऊपर वैसा ही एक और वर्षा धनुष है। और मैंने सुना है कि सभी शाखा कलिसियाओं में आज वर्षा धनुष है। पिता परमेश्वर हमें गोलाकार वर्षा धनुष दिखाते हैं जब कभी भी किसी प्रकार के हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति जिस वचन को सुनता है और पढ़ता है, अंत के दिनों में वो जागृत होगा, प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार होगा। परमेश्वर ऐसे कामों को जो अंत के दिनों में होंगे, उसने इन सब बातों को लिख दिया है। उसने हमें नई यरूशलेम के बारे में भी बताया है, जो स्वर्ग में सबसे सुंदर निवास स्थान है, ताकि हम उसकी आशा के साथ आगे बढ़ते रहें। आजकल के दिनों में जबकि ऐसी बहुत सारी कलिसियाएं नहीं हैं जो इस प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार करते हो, वे कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब समझने के लिए मुश्किल है, अनुवाद करने के लिए मुश्किल है, इसलिए लापरवाही से आपको इसे नहीं पढ़ना चाहिए। वो यहाँ तक कि विश्वासियों को इस किताब से दूर रखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन लोगों पर दोष लगाते हैं जो इस बात की घोषणा करते हैं कि समय आने वाला है जैसे कि बाइबल में लिखा है, मगर वे उन पर यह कहकर दोष लगाते हैं कि इनका परलोकी ज्ञान भी ज्यादा नहीं चलेगा। जब चर्च लोगों को कहता है कि वे सचेत रहें, प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाएं, तो लोग चर्च को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा पसंद नहीं। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई भविष्यवाणियों से दूर रहते हैं और अंत के समय के बारे में ये वचन मध्यम और मध्यम होते जा रहे हैं। कौन चाहता है ऐसे? ये शत्रु दुष्ट और शैतान है। वो हमें बाधित करता है कि हम अंत के दिनों के लिए तैयारी ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सचेत रहें और हमारा प्रभु हमसे कहता है अंत के दिनों में होने वाली बातों के लिए हम तैयारी करें, जैसे कि मत्ती 24 में लिखा है और बाइबल के दूसरे हिस्सों में। मगर मेमना कैसे खाया जाता है, ये शिक्षा निर्गमन 12 अध्याय 9 और 10 में हमें मिलती हैं, और यह हमें साफ रूप से बताती हैं कि परमेश्वर के वचन की किस तरह से हमें रोटी बनानी है। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत खाने का मतलब है परमेश्वर के संपूर्ण वचन को अपने हृदय में रखना, बाइबल की 66 किताबों को, उनमें से किसी को भी छोड़े बगैर। आपको केवल वही वचन नहीं सुनने चाहिए, केवल वही वचन नहीं पढ़ने चाहिए जो आपके कानों में सुनने को अच्छे लगते हैं। कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, बल्कि संपूर्ण खाना है आपको, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और साथ ही यहाँ पर लिखा है कि सुबह तक कुछ भी नहीं छोड़ देना है, अगर कुछ बच जाए तो आग में जला देना है। इसका मतलब है कि मेहनत से परमेश्वर के वचन की आपको रोटी बनानी है और सुबह होने से पहले अपने आप को सजा देना है, दूसरे शब्दों में प्रभु के आने से पहले। इसीलिए यदि आप परमेश्वर की संतान है तो प्रकाशित वाक्य में लिखे वचनों को आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उसकी रोटी बनानी चाहिए। जिस बात को आपको याद रखना है वो ये कि जब आप परमेश्वर के वचनों को अपनी रोटी बनाते हैं तो उस वचन का अनुवाद आपको शारीरिक रूप से नहीं करना है। दूसरा पत्रस 1:20-21 पद कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वे जिन्हें पवित्र आत्मा प्रेरणा देता था उन्होंने वही लिखा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। और हम उन्हें कैसे समझें? हमें उन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से समझना है। इसीलिए जब आप मेमने को खाते हैं आपको उसे आग में भून कर खाना है, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की आग में भून कर आपको उसे खाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए आपको उसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में सुनना और पढ़ना चाहिए। मैंने स्वयं भी असंख्य प्रार्थनाओं को और उपवासों को किया कि परमेश्वर के वचन का अनुवाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कर सकूं। प्रकाशित वाक्य के ये उपदेश भी परमेश्वर के द्वारा अनुवादित की गई मेरी प्रार्थना और उपवास के परिणाम स्वरूप। प्रकाशित वाक्य के बारे में 1996 में भी मैंने प्रचार किया था, क्योंकि भविष्यवाणी के जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण और गहरे हैं, इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं 3 बार प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार करूं। परमेश्वर ने कहा तब ये पूर्ण होगा, परंतु मेरे पास पर्याप्त समय था ही नहीं कि मैं 2 और बार कर पाता, इसलिए प्रकाशित वाक्य के ऊपर यह 2री बार प्रचार है। मैं अपने आप को अच्छे से प्रार्थनाओं के द्वारा तैयार करूंगा और गहरे और विस्तृत संदेश दूंगा, जैसे कि मानो यह 3री बार दिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं दूसरी भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में हैं, उनके संबंध के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप साफ रूप से उन बातों को समझ सकें जो भविष्य में होगी। चाहे ये गूढ़ वचन स्पष्ट कर भी दिए जाएं, मगर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका हृदय और आपके मनोभाव। सबसे पहले आपको एहसास करना चाहिए कि आप अपना मसीह जीवन इस तरह के धन्य वातावरण में जी रहे हैं। चाहे कोई वस्तु कितनी ही बहुमूल्य क्यों ना हो जो आपको दी जाए, अगर आप उसकी सच्ची कीमत को एहसास ना करें तो वो व्यर्थ होगा। इसीलिए यदि आप हर वचन को बहुमूल्य समझेंगे, उसकी सच्ची कीमत को पहचान लेंगे, और यदि आप परमेश्वर के अनुवाद के लिए धन्यवादी हों, तो ये सचमुच अर्थदायी और बहुमूल्य होंगे। और साथ ही प्रकाशित वाक्य के यह वचन आपको बताए जा रहे हैं, ये देखकर आपको अवश्य ही एहसास कर देना चाहिए कि समय बहुत करीब है। आपने सीधे रूप से देखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस कलीसिया की अगुवाई और संचालन किया है। इस कलीसिया की शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर ने इस कलीसिया पर कार्य किया है अपने वचन के द्वारा, जो इसके सदस्य की आत्मिक उन्नति के आधार पर और आत्मा के बहाव के आधार पर है। इसीलिए ये तथ्य है कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के वचनों को इस वक्त हमें बता रहा है, ये दर्शाता है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ पाया जाता है। क्योंकि अंत के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सचेत करें और भी बेहतर तैयार करें कि प्रभु का स्वागत कर सकें। क्योंकि आपने देखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रावधान इस कलीसिया के द्वारा अंत के समय में कैसे पूरा किया है, और यह आपके लिए महान विश्वास बना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप में से बहुत से नए यरूशलेम की ओर बढ़ें। आप पिता परमेश्वर के ऐसे हृदय और इच्छा को समझ सकें, आत्मा के प्रभाव में प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के द्वारा सवार हो सकें, आशा और आनंद से आगे बढ़ सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहूना को माना जाता है कि वो प्रकाशित वाक्य का लेखक है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1:1-9 में लिखा हुआ है। और यहूना प्रेरित यहूना है, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेरित यहूना ने यहूना के सुसमाचार को पहले, दूसरी और तीसरी पत्रियों को भी लिखा। यहूना के सुसमाचार के बहुत से हिस्सों में जो उसने लिखा था, यहूना अपने आप को एक ऐसा चेला दर्शाता है जिसे यीशु प्रेम करता था। वो 12 चेलों में सबसे छोटा था, और बाइबल में एक ऐसा दृश्य है जहां पर यहूना यीशु के सहारे इस तरह से झुका हुआ है। प्रभु ने अपने चेले प्रेरित यहूना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के वचनों को लिखवाया, जिसमें बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं। मगर प्रभु ने भविष्यवाणी की गहरी बातें प्रेरित यहूना को सिर्फ इसलिए नहीं दी कि प्रभु केवल उसी से प्रेम करता है। प्रेरित यहूना को इस तरह के प्रकाशित वाक्य के गहरे वचनों को प्राप्त करने के लिए उसे भी योग्यताओं को पूरा करना पड़ा। और योग्यता है बिना किसी प्रकार की बुराई के द्वारा पवित्र होना और ऐसा हृदय होना जो प्रभु के हृदय के सदृश है। जब उसने सरगर्मी की और अग्निमय प्रार्थनाओं को अर्पण किया, तो वो आत्मिक द्वार से पार निकल पाया और भविष्यवाणी की भेद की बातों को प्राप्त कर पाया और आत्मिक बातचीत कर पाया। प्रेरित यहूना वो व्यक्ति था जो योग्य था। 1985 AD में जब रोम के शासक डोमिटियानो ने महानता से मसीहत पर सताव किया, उस वक्त प्रेरित यहूना को गिरफ्तार कर दिया गया और उसे उबलते हुए गर्म तेल में डाला गया। मगर वो जीवित बच गया। उबलते हुए गर्म तेल में डाले जाने के बाद भी वो जीवित बच गया। और फिर वो लोग जो प्रेरित यहूना को मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसे पतमोस टापू पर भेज दिया। जब वो पतमोस टापू पर था, प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा। मगर कुछ ऐसे मसीही हैं जो यूहन्ना के बारे में ये कहते हैं कि उसका उबलते हुए गर्म तेल से बच निकल जाना ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, और वो इसीलिए क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति गर्म उबलते हुए तेल से बच सकता है, वो भी बिना किसी दाग के। और दानियल की किताब में भी ऐसी ही घटना हमें मिलती है। दानियल के तीन दोस्तों को आग के भट्टे में डाला गया जो आमतौर की आग से 7 गुना ज्यादा गर्म था। उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं हुआ, ना ही उनके कोई कपड़े जले। जब मैं इसके बारे में प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि किस तरह से गर्म उबलते हुए तेल से यूहन्ना बचा था, और ये एक सच्ची कहानी है। यदि आप दानियल की किताब देखें, जो कि पुराने नियम की किताब है, दानियल के तीन दोस्तों को गर्म भट्टे में डाला गया जो आम आग से 7 गुना ज्यादा गर्म थी, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, वे जीवित बच गए। दानियल 3:27 में लिखा है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। प्रभु जो कल, आज और हमेशा एक सा है, उसने इस तरह का कार्य प्रेरित यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया और साथ ही दानियल के तीन दोस्तों पर भी। आज भी परमेश्वर ऐसे कार्यों को प्रकट कर सकता है, मगर समस्या ये है कि सचमुच आज ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जो प्रभु के ऐसे कार्यों को प्राप्त कर सकें। उसका मतलब है कि मृत्यु भी किसी के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। मगर जैसा पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। प्रेरित यूहन्ना वो स्वयं से ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से योग्य था परमेश्वर से सुरक्षा पाने के लिए। आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वो जो परमेश्वर से जन्मा है वो बाइबल की 66 पुस्तकों के वचनों के आधार पर जीवन जीते हैं। वे नहीं करते जिन्हें परमेश्वर करने के लिए इनकार करता है। परमेश्वर कहता है, हम ईर्ष्या ना रखें, जलन ना रखें, बकबाद ना करें, बैर ना रखें, इसलिए वो भी ऐसा काम नहीं करते। और जिसे परमेश्वर हमें दूर करने को कहता है वो उन बातों को दूर करते हैं, वो हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं। जो परमेश्वर रखने को कहता है वे उसे रखते हैं, जैसे कि आज्ञाओं को मानना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, वे इन सब बातों को मानते हैं। जो बाइबल करने को कहती है वो उसे करते हैं, प्रार्थना करना, प्रेम करना, सुसमाचार का प्रचार करना। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। आप एक मेहनत से मसीह जीवन जी रहे हैं कि आप भी ऐसे बन सके, है कि नहीं? मगर जो परमेश्वर से जन्मा है वह उसे बचाए रखता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग पाप नहीं करते वो उन्हें बचाता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इसीलिए यूहन्ना सुरक्षित रह पाया, यहां तक कि ऐसी स्थिति में जहां पर वो मरने पर था। इसीलिए प्रभु ने भविष्यवाणी के वचन प्रेरित यूहन्ना को दिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, और उसे योग्य बनाया कि वो उन्हें लिख डालें। ये पहले की बात है। संक्षिप्त रूप से, सीनियर डिकनेस कमसम बीन के साथ मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मेरा लहू बह रहा था उस वक्त मेरी धड़कनें रुक गई थी और मैं मरने वाला था। मुझे इस प्रकार से मरता हुआ देखने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास किया कि मैं नहीं मर सकता, मैं जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में बहुत सी चीजें थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए परमेश्वर उन्हें नहीं ले जा सकते और वो जिंदा हो जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्षण कितना स्पर्शकारी हुआ होगा जब मैं जीवित हो गया था। मेरा पूरा का पूरा लहू मेरे मुंह से, मेरे नाक से निकल चुका था। मेरा शरीर पीला पड़ गया था। मेरी धड़कने रुक गई थी। कैसे कोई कल्पना कर सकता था कि मैं फिर से जी उठूंगा? मगर आप में से बहुतों ने ऐसा कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, अगर मर भी जाऊं तो जिंदा हो जाऊंगा। और जैसे उन्होंने विश्वास किया था, मैं फिर से ठीक हो गया, है कि नहीं? शारीरिक लोगों की दृष्टि में, जिन्होंने प्रेरित यूहन्ना को पत्मोस टापू पर निकाल दिया था, ये सारी की सारी चीजें वैसे ही हुई जैसे वे करना चाहते थे। मगर ये सारी बातें शारीरिक लोगों के द्वारा परमेश्वर के परिवेक्षण में परमेश्वर के प्रावधानानुसार पूरी हुई। परमेश्वर ने सब चीजों का प्रबंध किया ताकि प्रेरित यूहन्ना पूरी तरह से संसार से अलग हो जाएं, प्रार्थनाओं में अपने आप को लगा सकें और आत्मिक संसार में बातचीत कर सकें, ताकि वो परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त कर सकें। मैं पत्मोस दो बार जा चुका हूँ और वहाँ पर कुछ बातों ने मुझे प्रभावित कर दिया। हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रेरित यूहन्ना को अपनी आत्मिक आंखों से देखा है। हमारे पास यहाँ तक कि यूहन्ना की चित्रकारी भी की हुई है। यदि आप उन चित्रकारियों को देखें तो उसका जो माथा है वो उभरा हुआ था। यूहन्ना का माथा उभरा हुआ माथा था और मैं बड़े आश्चर्य में था कि क्यों ऐसा वो दिख रहा था। और जब मैं पत्मोस गया तब मैं जान पाया कि क्या कारण था। मैंने उस गुफा को देखा जहां प्रेरित यूहन्ना प्रार्थना किया करता था। सारे की सारी दीवारें चट्टानों की बनी हुई थी, क्योंकि लंबे समय से वो वहां प्रार्थना करता था। जिस जगह पर वो अपना माथा रखता था वो स्थान धसा हुआ था। हालांकि किसी उद्देश्य से उसने अपना माथा उस चट्टान पर नहीं मारा होगा, मगर उसे कभी कभार नींद आई होगी। हम जानते हैं कि उसने कितनी ईमानदारी से खड़े खड़े प्रार्थना की, इसलिए अवश्य ही उसका माथा कभी कभार उस चट्टान पर लगा होगा। परिणाम स्वरूप उसका जो माथा था वो बाहर उभरा हुआ था। परमेश्वर ने पहले ही उसका चेहरा दिखा दिया था। और जब मैं वहां पर गया, जब मैंने उस गुफा को देखा, तो मुझे वो स्थान मिला जो धसा हुआ था, जहां उसका माथा लगा होगा। और फिर मुझे पता चला कि उसने किस तरह से प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने सब बातों का प्रबंध किया ताकि प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर से प्रकाशन पा सके। इसी प्रकार से शारीरिक लोगों को ऐसा लग सकता है कि काम तो वैसे ही हुआ जैसे वो करना चाहते थे, मगर परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर यहाँ तक कि शारीरिक लोगों का भी बंदोबस्त करता है और सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि शारीरिक लोग भी यंत्रों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य का एक अध्याय एक पद कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये हमें बताता है कि प्रकाशन कहां से आया और प्रकाशन कैसे संभव हो पाया। प्रकाशन क्या है? प्रकाशन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लोगों को सत्य को जानने और समझने में मदद करता है, जिसे अन्यथा नहीं समझा जा सकता। दूसरे शब्दों में प्रकाशित वाक्य कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लोगों को परमेश्वर के सत्य को जानने और समझने में मदद करता है, जिसे अन्यथा नहीं सीखा जा सकता। जिस तरह से यर्मेहा 33 अध्याय 3 पद कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देगा जो उसे पुकारते हैं, और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक व्यक्ति जो योग्य है, परमेश्वर की नजरों में उचित है, जब वो अपनी प्रार्थनाओं में पुकारता है तो वो परमेश्वर से बातचीत कर सकता है और परमेश्वर से प्रेरणा और प्रकाशन प्राप्त करता है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैंने भी तो प्रार्थना में पुकारा था परंतु मुझे कोई प्रकाशन नहीं मिला। मगर कुछ दिनों या कुछ महीनों में प्रार्थनाओं में पुकारने से आपको प्रकाशन नहीं मिलता है। प्रार्थनाओं में पुकारना परमेश्वर का आदेश है, इसलिए आपको अपनी प्रार्थनाओं में पुकारना चाहिए। दोनों ही पुराने और नए नियम में परमेश्वर आपको कहता है कि प्रार्थनाओं में पुकारिए। हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता, यहां तक कि हमारा प्रभु भी प्रार्थनाओं में पुकारता था। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए, उसकी रोटी बनानी चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, और ऐसा करने पर आप पवित्र होते हैं, हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं, असत्य को और शारीरिक विचारों को और परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पुनः पाते हैं। ये है सच्चा मसीह जीवन। जब आप ऐसा करते हैं तो आप आत्मा में आते हैं और संपूर्ण आत्मा में। परमेश्वर निश्चित रूप से बड़ी बड़ी और कठिन बातें उन्हें बताता है जो उसे प्रार्थना में पुकारते हैं, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। क्या आप तैयार हैं? आइए हम देखें। हम थोड़े समय बाद इसे देख रहे हैं। आप देखिए इसे करीब से, आप इसके माथे पर उभार को देख सकते हैं। हमारे एक सदस्य ने उसका चेहरा पिलर पर देखा था और उसकी चित्रकारी की। उसके लंबे लंबे बाल हैं, क्योंकि उस वक्त कोई नाई की दुकान नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसके लंबे लंबे बाल हैं। जब उसे पत्मोस टापू पर भेज दिया गया, वो हमेशा प्रार्थना करता था और उसने प्रकाशन को प्राप्त किया और वो एक गुफा में रहता था। इसीलिए जब वो अपनी प्रार्थनाओं में पुकारता है तो वो परमेश्वर से बातचीत कर सकता है, प्रकाशन और प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में प्रकाशन पाया, और नए नियम के दिनों में उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पाया, और साथ साथ जब प्रकाशन की घोषणा की गई तो वो भविष्यवाणी का वचन बन गया। दूसरे कलीसिया के पास्टर्स, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने नियम में तो आपको केवल एक ही शब्द वहां मिलता है जो है परमेश्वर का आत्मा, मगर नए नियम में आपको पवित्र आत्मा शब्द मिलता है। ये एक ही आत्मा है, मगर इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पुराने नियम में ये परमेश्वर की आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, और आत्मा एक व्यक्ति के हृदय के बाहर से कार्य करता था, मगर नए नियम के दिनों में जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर दान के रूप में हमें पवित्र आत्मा देता है और वो हमारे हृदय में निवास करता है, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा कहा जाता है। जो बाइबल कहती है हमें सिर्फ वैसे ही चलना चाहिए। जब पास्टर्स आशीर्वचन देते हैं उन्हें पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि नए नियम में लिखा हुआ है। मगर कुछ लोग परमेश्वर की आत्मा इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। हम पुराने नियम के लोग नहीं हैं, इसलिए हमें इसे सुधार देना है जैसे कि बाइबल सिखाती है। इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रकाशन को प्राप्त किया, और साथ साथ में जब प्रकाशन की उद्घोषणा की गई तो यह भविष्यवाणी का वचन बन गया। और अब बाइबल कहती है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। इसका मतलब यह है कि जो प्रकाशन प्रेरित यूहन्ना ने पाया वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हुआ, और यह यीशु मसीह से आया। मूल रूप से आदम, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने रचा था, वो हमेशा परमेश्वर से बातचीत कर सकता था। वहां पर प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदम हमेशा सीधे रूप से परमेश्वर से सब बातें सीख सकता था, मगर आदम के पाप करने के बाद परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि आदम का आत्मा और उसके सारे के सारे वंशजों में आत्मा मर गया था, इसलिए वो परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते थे जो कि आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को योग्य बनाता है जो उसकी दृष्टि में उचित है कि वे परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा पाएं, और उनसे बातचीत करता है ताकि लोगों को अपनी इच्छा बताएं और उनका संचालन करें। मगर यीशु का इस धरती में आने के बाद, हमारी ओर से हमारे पापों को उठाने के बाद, हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बनने के बाद स्थिति फिर से बदल गई। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दीवार है वो नाश कर दी गई, और पवित्र आत्मा पाने के बाद जब हमारी मरी हुई आत्मा जीवित हो गई तो हम फिर से परमेश्वर से जुड़ गए जो कि आत्मा है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के कारण हमारे लिए फिर से संभव हो पाया कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सकें। उत्पत्ति में भी लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा काल संघर्ष न करता रहेगा। परमेश्वर मनुष्यों के साथ सदा संघर्ष न करता रहेगा, उसका कारण यह है क्योंकि मनुष्य अभी तो शरीर ही है। क्योंकि लोग शरीर बन गए इसलिए वो कहता है कि वो सदा काल तक उनके साथ संघर्ष न करता रहेगा, लेकिन नए नियम में परमेश्वर उनके साथ रहता है। जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं वो शरीर नहीं रहते बल्कि पवित्र आत्मा पाने के बाद वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग के बचाए हुए नागरिक बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाते हैं, इसलिए अब वो शरीर के जन नहीं कहलाते। इसीलिए जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दान के रूप में देता है, और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है। और बाइबल हमारे हृदय को क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों में बाइबल हमारे हृदय को पवित्र मंदिर कहती है, पवित्र मंदिर। इसीलिए कोई भी परमेश्वर से बातचीत कर सकता है यदि वो परमेश्वर की संतान है जिसने पवित्र आत्मा पाया है, और प्रकाशन उस व्यक्ति के ऊपर आ सकता है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार उचित है। आजकल के दिनों में प्रकाशन पाना, लोग उसे विधर्म कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि प्रकाशन तो पुराने नियम में समाप्त हो गया है, तो क्या नए नियम में कोई प्रकाशन नहीं है? प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित पौलुस, उन्होंने भी प्रकाशन के बारे में बाइबल के अलग अलग हिस्सों में बताया है। मगर आजकल के दिनों में लोग उसे विधर्म कहते हैं प्रकाशन पाने को। हालांकि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो झूठ बोलते हो जबकि उन्हें प्रकाशन नहीं मिलता है। ऐसे लोग तो परमेश्वर से नहीं डरते और नाश के मार्ग पर चले जाते हैं और उनका प्रकाशन सत्य नहीं होता। यदि कोई प्रकाशन सत्य है तो उसे पूरा होना चाहिए। यदि वो भविष्यवाणी करें तो वो पूरा होना चाहिए और वो सत्य साबित होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14:26 कहता है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। जैसे कि आप भजन गाते हैं, आप उपदेश सुनते हैं, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये कहता है कि सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर इन बातों को नहीं रोकते हैं बल्कि उन्होंने हमें कहा है कि आत्मिक उन्नति के लिए हम ऐसा करें। तो फिर हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। मगर प्रकाशन पाने को लोग क्यों विधर्म कहते हैं? हालांकि ऐसे लोग हैं जिनके पास अन्य भाषा होती है लेकिन उसका अनुवाद करने वाला कोई नहीं मिलता है, क्योंकि उसका अनुवाद कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। केवल वही कर सकता है जो परमेश्वर के प्रावधान में रहता है। वे पवित्र होने चाहिए जिनके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सी प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता होती है। सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए, यहाँ साफ रूप से लिखा है। जब लोग प्रभु के नाम से एकत्र होते हैं तो वहाँ प्रकाश होता है, प्रकाशन होता है। आपको परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा के समय में प्रकाशन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आता है, और प्रकाशन केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। इसीलिए इस किताब की शुरुआत में यहूना ने इस बात को साफ किया है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। मगर ये सब बातें केवल परमेश्वर की ओर से आती हैं। इसीलिए प्रेरित यहूना कहता है आगे, जो उसे परमेश्वर ने दिया। मत्ती 11 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, परमेश्वर ने हमें प्रकाशन सिर्फ अपने पुत्र के कारण, यीशु मसीह के कारण दिया है। इसीलिए पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, और पिता सटीक रूप से अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जानते हैं, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसका पुत्र यीशु मसीह पिता परमेश्वर को जानते हैं। पुत्र को छोड़ कोई पिता को नहीं जानता, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, इसलिए जो प्रकाशन पाता है वो पिता परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर के लोग मूसा एलिय्याह वो परमेश्वर को जानते थे। मूसा ने परमेश्वर को कहा कि वो जीवन की पुस्तक से उसका नाम काट दें, जिसका मतलब यह है कि जो बचाए गए हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। प्रेरित पौलुस ने भी ऐसा ही किया। वो भी चाहता था कि उसका नाम भी काट दिया जाए यदि वो अपने भाइयों को बचा सके। इसका मतलब यह है कि वे साफ रूप से पिता परमेश्वर को जानते थे, क्योंकि वे लोग थे जो प्रकाशन पाते थे। केवल पुत्र को छोड़ कोई पिता को नहीं जानता, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के कारण प्रकाशन दिया है, और प्रकाशनों के माध्यम से परमेश्वर चाहता है हमें, हम जो उसके संतान है, कि हम साफ रूप से पिता के बारे में जाने और समझें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके बारे में ना जाने या फिर धुंधले रूप से जाने। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान सच्ची संतान बने, जो पिता को समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। पिता परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उसे केवल धुंधले रूप से जाने, बल्कि वो चाहता है कि हम सच्ची संतान बने जो उसके बारे में साफ रूप से समझते और जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसी संतान ढूंढता है जो पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रकाशन पा सके, और उसके पुत्र यीशु मसीह की इच्छा अनुसार। और जब उसे कोई मिलता है जो प्रकाशन पाने के लिए उचित है, तो वो उसके द्वारा अपनी इच्छा को उद्घोषित करता है। आज के पाठ में लिखा है कि अपने दास को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। समय समय पर परमेश्वर ने अपने उचित लोगों को पहले से ही वो बातें बताई जो होने वाली थी इस मनुष्य जुताई के प्रावधान में। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आमोस 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर ने प्रेरित यहोन्ना को उन चीजों के बारे में साफ प्रकाशन दिया, और इस काम के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्ग दूत को भेजा। यहाँ पर लिखा है, और उसने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यहोन्ना को बताया। स्वर्ग में बहुत से अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं। सिपाहियों के समान स्वर्गदूत है, दासों के समान स्वर्गदूत है, ऐसे स्वर्गदूत है जो संगीत बजाते हैं और स्तुतियां गाते हैं, और प्रशासनिक कार्य के लिए भी है। जिस प्रकार से देश में अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, स्वर्ग के इतने विशाल और बड़े क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत है, और वो अपने अपने कामों को करते हैं। जिस तरह से देश में जनसेवक होते हैं, पुलिस होते हैं, स्वर्ग में भी ऐसा ही है। वहाँ स्वर्गीय सेनाएं हैं, सिपाही हैं, असंख्य महास्वर्गदूत है, प्रधान दूत है। बाइबल में कुछ ही लिखे हुए हैं। वहाँ पर असंख्य संख्या में प्रधान स्वर्गदूत है। स्वर्ग में बहुत ही कड़े क्रम में अलग अलग औहदे हैं और पद क्रम है। स्वर्ग दूतों के संसार में पदक्रम है और श्रेणियां है, वर्ग है। वहां पर सामान्य स्वर्गदूत हैं और इन सामान्य स्वर्गदूतों के ऊपर इंचार्ज है और प्रधान दूत है, जो मानो किसी सरकार में मंत्री के समान है। यहूदा 1:9 मिकाएल प्रधान दूत की बात करता है और लूका 1:19 में लिखा है कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। यहाँ पर जिब्राइल भी एक महान प्रधान दूत है। कोरिया के पुराने राजकुलों की तुलना में जिब्राइल एक जन सेवक के समान है और मिकाएल एक सैन्य अफसर के समान है। सैन्य अफसर तलवार भालों से लदे हुए रहते थे और वो हेलमेट पहना करते थे। आसानी से अगर समझें तो आप सोचिए कि मिकाएल एक सैनिक के समान है और जिब्राइल एक जन सेवक के समान है जो प्रशासनिक कार्य करता है। वहां पर असंख्य स्वर्गदूत है स्वर्ग में और उनमें से कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता है। यदि कोई स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वह स्वर्गदूत एक लीडर है और स्वर्गदूतों का लीडर प्रधान दूत होता है। वहां पर और भी मिकाएल और जिब्राइल के अलावा दूसरे प्रधान दूत हैं जो बाइबल में लिखे हैं। जब पिता परमेश्वर चलते फिरते हैं तो चार प्राणियों के अलावा हर तरफ 12 प्रधान दूत होते हैं, कुल 24 प्रधान दूत होते हैं। परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में तब बताया था जब मैंने इस कलीसिया की स्थापना की थी। यदि हम उसे देख सकें तो ये एक महान चमत्कार होगा। प्रेरित यूहन्ना को दिया गया प्रकाशन वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को चुनकर भेजा जो परमेश्वर के हृदय और इच्छा को अच्छे से समझ सकता था और अच्छे से इसे पहुंचा सकता था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मानो किसी देश का राष्ट्रपति यदि अपने किसी काम को किसी और से कराना चाहे तो वो ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो उसके हृदय और इच्छा को सही से समझ सके। और इसके साथ साथ वो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसके पास अधिकार भी हो। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी एक ऐसे प्रधान दूत को चुना और भेजा जो इसी तरह के औहदे पर था। प्रकाशित वाक्य की किताब पिता परमेश्वर के प्रावधान और इच्छा के बारे में साफ रूप से बताती है और उन बातों के बारे में भी जो जल्दी ही होने वाली है, उस प्रकाशन के माध्यम से जो प्रकाशन पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा भेजा उस दर्शन में जो प्रेरित यूहन्ना ने देखा था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पाठ कहता है कि प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी हैं वो है जिनका शीघ्र होना अवश्य है। कुछ लोग इतने उत्सुक हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब तो 1900 वर्ष पहले लिखी हुई थी, तो वो बातें अब तक क्यों नहीं हुई हैं? तो फिर उन दिनों में वो बातें जो शीघ्र होने वाली थी वो बातें अब तक क्यों नहीं हुई है? क्यों प्रेरित यूहन्ना कहता है कि वो बातें शीघ्र होना अवश्य है जबकि वो बातें तो अभी तक नहीं हुई है? मगर ये परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, वो कोई मनुष्य नहीं है, और वो कहता है कि ये बातें शीघ्र ही होना अवश्य है। ना केवल उन दिनों में बल्कि आजकल के दिनों में भी, चाहे लोग कितना ही लंबा क्यों ना जिएं, तो भी 100 वर्षों से अधिक वो नहीं जी सकते। इस कलीसिया में हमारे पास ऐसे सदस्य हैं जो 100 से ऊपर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो 90 से ऊपर की उम्र के हैं, तो भी 100 वर्ष तक जीवन जीना आसान नहीं होता है। और ऐसा हो सकता है कि लोगों को पता भी ना चले कि आज क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है, एक महीने या एक साल बाद। इसीलिए यदि परमेश्वर आत्मा और प्राण को बुला ले तो उन लोगों के लिए यही वो समय है जब वो बातें हो चुकी हैं। उनके साथ भी यही लागू होता है जिन्होंने अपना जीवन 1900 वर्ष पहले या 1800 वर्ष पहले जिया था। जब परमेश्वर ने उनके प्राणों को ले लिया था तो उनके लिए भी वही समय था जब वो बातें उनके लिए हो गई। वो आज तक तो जीवित नहीं है, इसीलिए जो भी इन भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए जबकि वो नहीं जानते हैं कि वो समय कब आने वाला है। वो जो कहा करते थे, क्यों वो समय अभी तक नहीं आया है? क्योंकि प्रभु ने तो कहा था कि वो समय शीघ्र आने वाला है, मगर वो पहले ही नियुक्त समय में आ पहुंचे हैं। इसीलिए आपको अवश्य ही इस बात को अपने हृदय में रखना है कि आपका समय हमेशा नजदीक है। जब परमेश्वर मेरी आत्मा और प्राण को ले लेगा तो सब कुछ उसी क्षण में हो जाएगा, उसी समय में हो जाएगा। इस वक्त जब आप प्रकाशित वाक्य के पहले संदेश को सुन रहे हैं, तो मुझे आशा है कि एक बार फिर से आप धन्य व्यक्ति बने नए संकल्पों को लेने के द्वारा। अंत के समय की वो बातें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है वो बिल्कुल होने पर है। अंत के समय के बहुत से चिन्ह प्रकट हो रहे हैं संसार के इस धरती के हर कोने में। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एहसास करें कि यह कितनी धन्य बात है कि परमेश्वर ने आपको प्रकाशित वाक्य के इन संदेशों को सुनने के योग्य बनाया है, ताकि आप सिद्धता से अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सकें। जिस प्रकार से पाठ में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। मुझे आशा है कि आप सबके सब वचनानुसार जिएंगे जो आप सुनते हैं, और इस तरह से वास्तविकता में धन्य लोग बने। बाइबल हमें भविष्यवाणी के वचनों को सुनने या अनुवाद करने से नहीं रोकते हैं, मगर ये कहते हैं कि धन्य है वह जो भविष्यवाणी के इन वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। धन्य है वह जो भविष्यवाणी के इन वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। जो बातें आप सुने, आप उन बातों को माने और आशीष पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। आज का संदेश हम में जीवन और विश्वास बने। प्रकाशित वाक्य के संदेश शुरू हो चुके हैं। पिता, मुझे आशीष दीजिए अपने अनुग्रह से, और मेरी मदद कीजिए कि साफ रूप से प्रकाशित वाक्य पर मैं प्रचार कर सकूं। हमारे सदस्यों की मदद कीजिए कि लालसा भरे हृदय से वे अपने आप को तैयार कर सकें, और उन्हें आशीष दीजिए कि एक भी वचन वो ना छोड़ें, बल्कि वचन को अपने हृदय में छापें और उसके अनुसार चलें। आपने कहा है, धन्य है वह जो भविष्यवाणी की इन बातों को सुनते और पढ़ते हैं और उन बातों को मानते हैं। हमारे सदस्यों को आशीष दीजिए कि वे परिश्रम से इन वचनों को पढ़ें और उन वचनों को सुनें और उन वचनों को मानें। धन्यवाद पिता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। कोई भी व्यक्ति जो इन भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते सुनते हैं, अंत के दिनों में जागृत होने के लिए, प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाने के लिए, परमेश्वर ने ऐसी बातों को होने दिया है कि अंत के दिनों में होने वाली बातें लिखी जाएं। प्रेरित यूहन्ना के लिए कि वो ऐसे गहरे परमेश्वर के प्रकाशन को पा सकें, उसके लिए उसे योग्यताओं को पूरा करना पड़ा। और योग्यताएं हैं बिना किसी प्रकार की बुराई के पवित्र होना और ऐसा हृदय पाना जो प्रभु के समान हो। प्रभु ने भविष्यवाणी की बातें यूहन्ना प्रेरित को दी जो परमेश्वर की नजर में उचित था, और उसे लिखने के योग्य बनाया। ये कुछ ऐसी चीज है कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में वो लोगों को परमेश्वर के सत्य के बारे में समझने और जानने की योग्य बनाता है, जिसे अन्यथा नहीं सीखा जा सकता। समय समय पर परमेश्वर ने अपने उचित लोगों को पहले से ही उन बातों के बारे में बताया जो मनुष्य जुता के प्रावधान में होने वाली है। प्रकाशित वाक्य की किताब साफ रूप से परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान के बारे में लिखती हैं, और वो बातें जो शीघ्र होने वाली हैं, और वो सब प्रकाशनों के द्वारा जो परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत को देकर उस दर्शन में यूहन्ना को दिखाया। अंत के समय में प्रकाशित वाक्य की बातें जो होगी वो बिल्कुल नजदीक है। अंत के समय में बहुत से चिन्ह धरती के हर कोने में हो रहे हैं।